नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेगासस जासूसी कांड में पत्रकारों के अलावा विपक्ष के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। द वायर ने रविवार के बाद आज एक और रिपोर्ट छापी जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि जासूसी के लिए 300 फोन नंबरों की एक संभावित सूची बनाई गई थी जिसमें राहुल गांधी के भी 2 नंबर शामिल हैं। इस सूची में राहुल से जुड़े 9 और नंबर डाले गए थे, लेकिन राहुल ने नंबर बदल लिया। राहुल ने वायर से कहा है कि उनके व्हाट्सएप पर अतीत में संदिग्ध मैसेज आए हैं, जासूसी के लिए ऐसा ही किया जाता है। राहुल ने वायर से यह भी कहा कि यदि आपकी जानकारी सही है तो इस स्तर की निगरानी व्यक्तियों की गोपनीयता पर हमले से आगे की बात है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव पर हमला है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए। राहुल गांधी के अलावा उनके सहयोगी अलंकार सवाई सचिन राव का भी नाम इस सूची में है। राहुल गांधी के 7 गैर राजनीतिक दोस्तों के भी नाम हैं।
राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर अब 5 लोगों के उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? क्योंकि ये पिगेसस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा।
ये हुआ है और ये हो रहा है इस देश में। संकटग्रस्त आर्थिक हालात वाले देश में विपक्ष और पत्रकारिता की निगरानी करने की यह खबर भयानक है। वायर की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जासूसी के लिए संभावित लोगों की सूची में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी नाम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अलग राय देने के बाद उनका नाम भी संभावित लोगों में डाला गया। ममता बनर्जी के निजी सचिव, भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर के फोन पर भी पेगासस से हमला हुआ है। बीजेपी के नेता प्रहलाद पटेल की भी जासूसी है जो केंद्रीय मंत्री हैं। बताइए, केंद्रीय राज्य मंत्री की भी जासूसी उन्हीं की सरकार करा रही थी। वैसे आप हिंदी अखबारों में छपी इन खबरों को जरूर देखिएगा। ज्यादातर में इस तरह से छापा गया है कि छप भी जाए छुप भी जाए। दुनिया के कई न्यूज संगठनों के 80 से अधिक पत्रकार इतने बड़े पर्दाफाश के नाम पर हवा में मिठाई नहीं बना रहे थे। पेरिस में बिना मुनाफे की पत्रकारिता करने वाली संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50,000 से अधिक फोन नंबरों की सूची मिली है जिनकी निगरानी की गई और की जाने वाली थी। इनमें से 1,000 के आसपास फोन नंबर की ही जांच की जा सकी है। एमनेस्टी ने अपने फोरेंसिक लैब में इन नंबरों की जांच की और दुनिया के 15 समाचार संगठनों से साझा किया। समाचार संगठनों ने अपने स्तर पर भी तमाम सूचियों का परीक्षण किया है। फॉरबिडन स्टोरी ने लिखा है कि 50,000 की सूची से पता ही नहीं चलता कि किसने नंबर डाले हैं और ना ही पता चलता कि कितने फोन को असल में निशाना बनाया गया। इस सूची में भारत, अजरबैजान, बहरेन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के फोन नंबर हैं। भारत में दी वायर ने इस पर खोजी काम किया है, तो अमेरिका में दी वॉशिंगटन पोस्ट, पीबीएस फ्रंटलाइन, ब्रिटेन में दी गार्डियन, फ्रांस के लामोद, रेडियो फ्रांस, जर्मनी के एक बड़े अखबार ज्यू डॉयशे साइटुंग और डी जाइट में छपा है। बेल्जियम के लेसवा और नैक और इसराइल के हआरेज में भी खबर छपी है। लेबनान, हंगरी, मेक्सिको के अखबारों में खबर छपी है। भारत में दी वायर पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल है। कई अखबारों ने भारत में इस खबर को आधा अधूरा ही छापा है। Do you get my point? हिंदी अखबारों और भारतीय अखबारों में इस खबर के ना छपने से क्या होता है, या आधे अधूरे तरीके से छापने से क्या होता है? यह खबर दुनिया के अखबारों में जिस तरह से छपी है उससे भारत की छवि बेहतर नहीं होती है। आप नहीं कह सकते कि 10 देशों के अखबार और 80 से अधिक पत्रकार मिलकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि यह पर्दाफाश केवल भारत की सरकार के बारे में नहीं है, 50 देशों के फोन नंबरों के बारे में है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के ही आर्सेनल लैब की रिपोर्ट छपी जिसे कई हिंदी अखबारों और न्यूज चैनलों ने मिलकर भारत की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। आर्सेनल ने फोरेंसिक जांच के बाद बताया कि भीमा कोरेगांव केस के आरोपी रोना विल्सन, सुरेंद्र गार्डलिंग, आनंद तिलतुंडे, स्टैन स्वामी के कंप्यूटर को हैक किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज डाले गए और फिर इन सभी को भारत के खिलाफ साजिश करने, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर जेलों में सड़ा दिया गया। स्टैन स्वामी की तो मौत हो गई। दुनिया भर में छपी पेगासस जासूसी कांड की खबरों में इन लोगों का भी नाम है और कहा गया है कि इनमें से कई लोगों के फोन की जासूसी की गई। यह कोई दांत चियारने वाली खबर नहीं है। ऐसी खबर है कि हलक सूख जानी चाहिए। यह कहानी चोर दरवाजे से लोकतंत्र को रौंद कर मिट्टी में मिला देने की है। अगर आपने अभी नहीं सुनी और हिंदी प्रदेश के गांव गांव में नहीं सुनाई तो 20 साल बाद बैक डेट में भी कुछ सुनने सुनाने लायक नहीं बचेंगे। मेरी ये बात लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए। 2018 में गांधी जयंती के दिन ही वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी जाती है, इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास के भीतर। जमाल के फोन को इसी पेगासस के सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रैक किया गया। पेगासस की कंपनी ने हमेशा इससे इनकार किया है, जबकि खशोगी, उनकी पत्नी और मंगेतर तीनों के फोन पर पेगासस से हमला हुआ। मंगेतर ने भी इस रिपोर्ट को लेकर आज ट्वीट किया है। पेगासस से फोन की जासूसी का संबंध केवल जानकारी की चोरी से नहीं है, बल्कि किसी निर्दोष को हत्या के इरादे और आतंकवाद के आरोप में फंसा देने का भी है। वैसे भी सही सूचनाओं के बिना एक नागरिक नागरिक नहीं होता है। दुनिया भर के अखबारों में अपने लोगों की जासूसी कराने वाले देश अजरबैजान और रवांडा के साथ भारत की वाहवाही छपी है। अगर आप इसे वाहवाही समझते हैं, समझ लीजिए। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने कहा है कि वह अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचती है ताकि आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अगर इस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल हुआ है तो चिंता की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट में एनएसओ के अधिकारी का बयान है कि कंपनी सारे आरोपों की जांच कर रही है, अगर बात सही निकली तो उस देश के साथ अपना करार रद्द करेगी। एनएसओ यह नहीं बताती है कि उसने अपना सॉफ्टवेयर किस देश को बेचा, कितने में बेचा। दिल्ली के खास हलके में रविवार काफी लंबा बीता। इस खबर के आने की आशंका में एक रविवार में एक पूरा सोमवार भी बीत गया। सरकार समझ गई कि पूरी दुनिया में सोमवार की सुबह भारत की क्या छवि पेश करने वाली है, इसलिए खबरों के छपते ही रविवार 9 बजे रात के बाद एक बयान आ गया सरकार का। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की 1984 का हिंदी अनुवाद इन दिनों नहीं पढ़ रहे हैं और प्राइम टाइम देख ही रहे हैं तो सोचिए जिस संख्या में वायर के पत्रकारों के फोन की जासूसी हुई है, उससे तो बेहतर होता कि वायर के दफ्तर में सीधे जासूसी तैनात कर दिए जाते, बस उनकी कॉफी का खर्चा सिद्धार्थ वरदराजन को नहीं देना पड़ता। सभी के नाम नहीं बता सकते, लेकिन इसकी सूची में द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, एम के वेणु, वायर की रोहिणी सिंह, जासूसी के समय वायर के लिए काम कर रही स्वाति चतुर्वेदी, वायर में कॉलम लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक परंजय गुहा ठाकुरता, टीवी 18 की पूर्व एंकर और दी ट्रिब्यून की डिप्लोमेटिक रिपोर्टर स्मिता शर्मा, इंडियन एक्सप्रेस के तब के डिप्टी एडिटर सुशांत सिंह, रितिका चोपड़ा, द हिंदू की विजेता सिंह, द पायनियर के जे गोपी कृष्णन, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टर साइकल दत्ता, आउटलुक के पूर्व पत्रकार एसएनएम अब्दी और पूर्व डीएनए रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी, हिंदुस्तान टाइम्स के प्रशांत झा और शिशिर गुप्ता के नाम भी हैं। पूर्व लोकसभा सांसद वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतिया का भी नाम है। पूर्वोत्तर के फ्रंटियर टीवी की प्रधान संपादक मनोरंजना गुप्ता, बिहार के संजय श्याम, पंजाब के जसपाल सिंह हिरन के भी नाम है। हिरन लुधियाना के पंजाबी दैनिक रोजाना पहरेदार के प्रधान संपादक हैं। झारखंड के रामगढ़ के रूपेश कुमार सिंह स्वतंत्र पत्रकार है और उनसे जुड़े 3 फोन नंबर लीक हुए डेटा में मिले हैं।
सरकार का एक ही लक्ष्य है, अपनी गंभीर सी गंभीर विफलताओं को नॉर्मल बनाकर खारिज करना। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस आर न्यू नॉर्मल, बेरोजगारी न्यू नॉर्मल, फॉलिंग इकोनॉमी न्यू नॉर्मल, पत्रकारों पे मुकदमे न्यू नॉर्मल, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। बेसिकली सरकार ये दिखाना चाहती है कि उसकी जितनी भी विफलताएं हैं वो बहुत ही सामान्य है, या इसके पीछे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, फॉरेन हैंड या विपक्ष की साजिश है। ये जो हैकिंग हुई है ये सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं, पर वो हर एक पत्रकार और एक्टिविस्ट की सुरक्षा की बात है। इट ऑल्सो कंसर्न्स द सेफ्टी ऑफ आर सोर्सेज, जो बहुत बार हमारे सूत्र अपनी जान और नौकरी दोनों दावे पर रखकर हमें ऐसी खबर देते हैं जिसके बारे में हम घोटालों पर लिख सके, ये इनकी सेफ्टी का भी इशू है। निजता की जब बात होती है तो इट डजंट कंसर्न ओनली जर्नलिस्ट या यू नो पॉलिटिशियंस या उद्योगपति, ये भारत के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। और जब उस संविधान के संरक्षक ही उस संविधान की धज्जे उड़ाने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पे चिंता होगी। सरकार को यह क्लैरिफाई करना चाहिए कि पेगासस का सॉफ्टवेयर इसराइल से खरीदा उन्होंने कि नहीं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। देयर इज नो क्लियर यस और नो कि हमने खरीदा है या हमने नहीं खरीदा है, और अगर खरीदा है और सरकार ने हैकिंग करी तो क्यों करी, इस पर भी सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए, हम सबकी हैकिंग क्यों करी, नन ऑफ अस आर टेररिस्ट, हम जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं या यू नो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, क्यों करी उनकी हैकिंग, और अगर नहीं करी तो किसने करी, क्योंकि इट बिकम्स एन इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दैट समबडी इज हैकिंग इन टू द फोन्स ऑफ प्रोमिनेंट पीपल इन योर कंट्री, तो इस पर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए. एंड अगर सरकार इस पर इंक्वायरी नहीं करती है और इसको नॉर्मल बना के डिसमिस करने की कोशिश करती है, देन आई होप द कोर्ट्स टेक्स वो मोटो कॉग्निसेंस और शुड इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी.
मेरा फोन पेगासस स्पाईवेयर की लिस्ट में मध्य 2018 से करीब आया, और तब से लेकर जब अभी मेरा फोन इसी महीने चेक किया गया फॉरेंसिक के द्वारा, तो भी उसमें पेगासस के द्वारा एंट्री के एविडेंस पाया गया. और मेरा जो 2018 से लेकर अभी तक जिस तरह की पत्रकारिता मैंने की, जिस तरह की स्टोरीज मैंने की, वो मैं जब याद करता हूँ तो इस तरह से हैं. 2018 में तीन बड़ी स्टोरीज थी जिनके लिए मुझे रामनाथ गोयन का अवार्ड भी मिला. उसमें एक तो रफाल की स्टोरी थी, रफाल हवाई जहाज के खरीद फरोख्त से जुड़ी कहानी थी, उसी से जुड़ी हुई कहानी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट में ऊंचे ऊंचे तौर पर कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे थे कॉलेजियम के बीच में, उस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए उस वक्त की. उसी दौरान सीबीआई में एक बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ था जिसमें कि आलोक वर्मा जो कि उस वक्त डायरेक्टर थे और जो उनके स्पेशल डायरेक्टर थे, उन दोनों को हटाया गया और प्रधानमंत्री ने एक इंटरिम डायरेक्टर बनाया और फिर उन्होंने रिपोर्ट करके एक और डायरेक्टर बनाने की कोशिश की. ये तीन बड़ी कहानियां थी जो कि सीधे सीधे सरकार के बारे में थी, सरकार से रिलेटेड थी, जो 2018 में मैंने की. 2019 में पुलवामा में टेरर स्ट्राइक और उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक, ये दो बड़ी कहानियां 2019 के शुरुआत में हुई और उसके बाद में येल में पढ़ाने के लिए चला गया. 2020 में जैसा कि सबको पता है जो अभी तक चल रहा है, लद्दाख में चीनी सेना भारतीय जमीन पर आई और उस पर कब्जा करके बैठी, और इस बारे में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में की. इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ने के पश्चात मैंने विदेशी मैगजीन्स में, जर्नल्स में और भारतीय पोर्टल्स पर और भारतीय अखबारों में और मैगजीन्स में कई इस तरह की कहानियां लिखी जो कि सरकार से सवाल पूछती हैं. सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर से, इस तरह के स्पाईवेयर से, एक तरफ तो जो मेरे सोर्सेज हैं, जिन लोगों ने मुझे खबरें दी, जिन लोगों ने मुझे ब्रीफ किया, उनको खतरा होता है, पर उससे ज्यादा खतरा जो जर्नलिस्ट के बीच में, पत्रकारों के बीच में जिस तरह भय फैलता है, उससे जो असर भारतीय लोकतंत्र पे पड़ेगा और जो भारतीय लोकतंत्र को और कमजोर करता है, वह सबसे खतरे की बात है.
भारत में यह खबर सबसे पहले 31 अक्टूबर 2019 के दिन दस्तक देती है जब इंडियन एक्सप्रेस की सीमा चिश्ती की रिपोर्ट छपी. सीमा अब वहां से इस्तीफा दे चुकी हैं. हुआ यूं था कि व्हाट्सएप कंपनी ने अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में इजराइल की कंपनी एनएसओ पर मुकदमा किया कि इसने अमेरिका और कैलिफोर्निया के कानून को तोड़ा है, क्योंकि व्हाट्सएप अपने ग्राहकों को गारंटी देता है कि उनके फोन को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है. तब व्हाट्सएप ने उन सभी उपभोक्ताओं को खुद से बताया कि आपका फोन हैक हुआ है. सीमा चिश्ती ने भारत सरकार के गृह सचिव और टेलीकॉम सचिव से तब जवाब मांगा था, कोई जवाब नहीं मिला. खबर छपने के बाद भारत के पूर्व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा है.
पहली नवंबर 2019 को पहली स्टोरी पेगासस और भारत के संदर्भ में मैंने की थी इंडियन एक्सप्रेस के लिए, और उसमें व्हाट्सएप ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की थी कि उसको जानकारी है कि दुनिया भर में 1400 एक्टिविस्ट, वकील और पत्रकारों पर पेगासस द्वारा सर्वेलेंस या जासूसी हो रही है, जिसमें से 121 लोग जो हैं वो भारतीय हैं, और उसने ये जानकारी भारत सरकार को दे दी थी. उसने एक पत्र के माध्यम से मई में उनको सूचित किया था और सितंबर 2019 में भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया. कई दिनों तक उनसे कोई किस तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई, और कुल मिलाकर उसके बाद जब भारत सरकार ने इस बात पर चर्चा की, बात की, रविशंकर प्रसाद जी ने बयान दिया और फिर पार्लियामेंट में वो बोले, तो उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि पेगासस से किसी तरह के संबंध है भारत सरकार के. इस पर जानकारी होनी थी, इस पर एक कमेटी बैठनी थी, इस पर जांच होनी थी, लेकिन 2 साल बीत गए हैं, उस पर अभी तक कुछ हुआ, इसकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई.
पेगासस की सूची को देखकर लगता है कि जिन पत्रकारों ने सरकार के लिए अपनी पत्रकारिता की कुर्बानी दी, उनके फोन की भी जासूसी की गई। ये एक डार्क कॉमेडी के समान है। भारतीय फिल्म शोले के एक रूपक से आप समझ सकते हैं, जब गब्बर कहता है कि क्या सोचा था, सरदार इनाम देगा, लेकिन कालिया का फोन ही हैक हो गया। जासूसी के इन किस्सों में पेगासस कांड एक छोटा सा हिस्सा है। जासूसी के और भी कई तरीके हैं। मेरी इस लाइन पर जरूर कोई आईपीएस मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन मुस्कुराने वाले उस अफसर को भी नहीं पता कि उसका फोन हैक हो रहा होगा। पेगासस सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपके फोन पर मिस्ड कॉल छोड़ता है और आपके फोन के भीतर एक जासूस बिठा देता है। यह जासूस आपके फोन के कैमरे को भी ऑन कर देता है, जिसके जरिए दूर बैठा कोई शख्स चुपचाप देख रहा होता है कि आप कहां गए, किससे मिले, किस रास्ते से जा रहे हैं। फोन बंद है तब भी जासूस आपके फोन के जरिए सीधा प्रसारण कर रहा होता है। आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं यह सोच करके इसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपके फोन में बैठा जासूस सारा कुछ रिकॉर्ड करता है। है ना खतरनाक बात। आने जाने वाले सारे एसएमएस पढ़ता है, बातचीत सुनता है, तस्वीरें उड़ा लेता है, फाइलें ले भागता है, ईमेल पढ़ लेता है और दूसरी ऐप में घुस जाता है। आप फोन पर क्या क्या सर्च करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री निकाल लेता है। फोन आपका है, लेकिन आपकी सूचनाओं का मालिक कोई और है, वही जो आपसे डरा है और फोन रिकॉर्ड कर आपको डराता है। सोचिए, आपके साथ जहां जहां फोन है, हर निजी क्षण का वीडियो कोई और देख रहा है। आजकल अभूतपूर्व शब्द काफी चला है, इसलिए यह पर्दाफाश अभूतपूर्व है। बिजनेस इंसाइडर की बैकी पीटरसन की 6 सितंबर 2019 की रिपोर्ट है कि इसराइल में एनएसओ जैसी कई कंपनियां हैं, 2 दर्जन से भी ज्यादा, जो जासूसी के सॉफ्टवेयर बनाती बेचती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पिछले साल एनएसओ का ही मुनाफा $240 मिलियन का था, भारतीय रुपए में 1794 करोड़। सोचिए कितना बड़ा धंधा है। और सवाल है कि इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए भारत सरकार ने कितने पैसे दिए। अक्टूबर 2019 में इसे सबसे पहले कनाडा के सिटीजन लैब ने पकड़ा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का लैब है और व्हाट्सएप के साथ काम करता है। सितंबर 2018 में कनाडा की साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ने कहा कि 45 देशों में 36 पेगासस ऑपरेटर का पता लगा है। इसी लैब ने आर्सेनल के साथ भी काम किया, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे, सुरेंद्र गार्डलिंग, स्टैन स्वामी, रोना विल्सन के कंप्यूटर में जाली दस्तावेज डाले गए। इस बार की रिपोर्ट को भी सिटीजन लैब ने जांचा परखा। अब खेल देखिए, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं भारत सरकार के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। लेकिन अब यह बात निकल कर आई है कि जिन लोगों की जासूसी की जानी थी, संभावित लोगों की, उस सूची में अश्विनी वैष्णव का भी नाम है। लेकिन ये नए मंत्री कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और वो भी एनएसओ एक कंपनी के बयान के आधार पर। कोई भी कंपनी अपने आप को बेदाग तो कहेगी ही, एक लाइन में ही मंत्री जी बता देते कि भारत सरकार ने पेगासस से सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं।
A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over the top allegations have been made around this story. Honorable Speaker sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, honorable speaker sir. I highlight sir, NSO has also said that the list of countries shown using Pegasus is incorrect. And many countries mentioned are not even our clients. It is evident, Honorable Chairman Sir, Speaker Sir, that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. The publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly. And the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism.
क्या वाकई अवैध रूप से संभव नहीं है? बहुत कुछ संभव है अवैध रूप से। वैसे 2019 में तब दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मामला उठाया था। इस बार राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा, आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में बहस की मांग की है। राहुल गांधी ने दो दिन पहले एक ट्वीट कर पूछा कि इन दिनों लोग क्या पढ़ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने उसी ट्वीट को लेकर फिर से ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर लिखा है, वी नो वॉट ही हैज बीन रीडिंग एवरीथिंग ऑन योर फोन #Pegasus। हिंदी में मतलब हुआ, हम जानते हैं कि वे इन दिनों आपके फोन पर क्या पढ़ रहे हैं। #Pegasus। कांग्रेस ने आज बीजेपी का नाम भारतीय जासूस पार्टी रख दिया।
राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है?
2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, RTI की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है।
किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता है, होता ही है। लेकिन अब जो आ गया है तो इसमें होता है कई लोगों को किसी तरह से तंग करना, परेशान करना, ये सब भी चलता ही रहता है, आप सब लोगों को ज्यादा मालूम है।
यह मामला साधारण नहीं है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी इस खबर पर हैरानी और चिंता जताई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी बयान दिया है कि विदेशी एजेंसी भारत के नागरिकों की जासूसी में शामिल है, इससे अविश्वास गहरा होता है। आप जनता से क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आपके लिए खबर लिखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? अगर अखबार का दाम देकर पत्रकारों के नाम पर गुलामों की लिखी खबर पढ़नी है तो आप अखबार क्यों खरीद रहे हैं? क्या आप उस पैसे को मंदिर निर्माण के चंदे में नहीं दे सकते? देखा, धर्म की बात की है मैंने, पुण्य मिलेगा, लोकतंत्र का सत्यानाश भी हो जाएगा और मंदिर भी भव्य बनेगा। एक पंथ दो काज, आइडिया अच्छा है या नहीं?
जिन भी लोगों के फोन को सर्विलांस पे रखा गया था वे तमाम ऐसे लोग थे जो सरकार की जन विरोधी नीतियों का, इनके घपलाओं घोटालों का भंडाफोड़ कर रहे थे। जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने 9 जून 2017 को ग्रीदी के पारसनाथ पहाड़ पर मोतीलाल बास्के नामक आदिवासी की फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी और वह रिपोर्ट द वायर समेत कई वेब पोर्टल पर प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद पूरे झारखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और इस फर्जी मुठभेड़ पर राज्यसभा और लोकसभा में भी सवाल उठे थे। तो उसके बाद ही हमारा फोन और मेरे परिजनों का फोन भी सर्विलांस पे रखा गया और उसके बाद 4 जून 2019 को मेरा दोस्तों के साथ अपहरण किया गया और सेंट्रल IB के जरिए, और फिर 2 दिन की इलीगल कस्टडी में रखने के बाद 7 जून को इन्होंने गया सेंट्रल जेल में हमें भेज दिया था। तो वो पूरा दिखाता है कि किस तरह से एक आदिवासी की फर्जी मुठभेड़ में हत्या के खिलाफ ग्राउंड रिपोर्ट करना एक पत्रकार के लिए UAPA जैसे धाराओं के तहत केस का कारण बन जाता है। तो ये सरकार इस पेगासस स्पाईवेयर से खुफियागिरी करवा के ये कहना चाह रही है कि तुम हमारे खिलाफ नहीं बोलो, जो हमारे खिलाफ बोलोगे हम खुफियागिरी करवाएंगे, हम जेल में डालेंगे, हम तुम पे यूपीए के धर्मकदमे दर्ज करेंगे। तो इसमें मेरा साफ कहना है कि तुम हमारा फोन सर्विलांस पे रखो, तुम हमें जेल में डाल दो, लेकिन मैं ताउम्र जिंदगी भर सच्चाई रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में दिखाता रहूंगा।
अगर आपको सरकार का ही केवल पक्ष सुनना है तो अखबार की जगह सरकार की होर्डिंग पढ़ा कीजिए जो पेट्रोल पंप पर लगा दी गई है। पेगासस जासूसी कांड का मामला दुनिया के 50 देशों से जुड़ा है। लोकतंत्र पर हमले की यह खबर व्यापक है और यह हमला केवल फोन की जासूसी से नहीं होता है। सारी बातें एक ही कार्यक्रम में नहीं बता सकता, इस खबर से जुड़ी और भी बातें सामने आएंगी, एक एक कर हम बताते रहेंगे क्या क्या छुपाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर के एक्टिविस्ट लिचोबेम एरेंड्रो को फेसबुक पर पोस्ट करने के कारण 13 मई को गिरफ्तार किया गया। 17 मई को लोकल कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन तभी जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया। एरेंड्रो ने इतना लिखा कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा। पुलिस आ गई, जेल ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एरेंड्रो को तुरंत रिहा किया जाए। आप नागरिक कुछ मत बोले, चुप रहिएगा, केवल व्हाट्सएप में जो वो भेज रहे हैं वही फॉरवर्ड करते रहिए। लोकतंत्र का क्या है, खत्म हो जाए तो होने दीजिए, पहले खुद को जेल जाने से बचाइए, डरे रहिए, मरे रहिए। इस तरह से आपकी चुप्पे और आपका डर उस लोकतंत्र को सत्यानाश के करीब ले जाएगी जिसके लिए लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। आप ब्रेक ले लीजिए।
महाराष्ट्र दूसरी लहर के प्रकोप से पूरी तरह उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां का एक जिला ऐसा है जिसका बड़ा केस लोड नीचे खींच रहा है। यह जिला है कोल्हापुर। लेकिन अब राज्य का रोजाना 25% केस लोड और 18% मौतें रिपोर्ट कर रहा है। जिले में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 1368 लोग और 5745 सिंगल डोज वाले लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। अप्रैल में जब महाराष्ट्र दूसरी लहर के चरम पर था तब यहां के कोल्हापुर नाम के जिले में रोजाना 100 मामले भी नहीं आते थे। जिले में महज 758 एक्टिव मरीज थे, लेकिन जुलाई में महाराष्ट्र के कुल मामलों का लगभग 18% हिस्सा यहां देखने को मिल रहा है। बीते दो दिनों में ही जिले में एक्टिव मामलों में 17% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य की मृत्यु दर 2% है तो कोल्हापुर की 2.8%।
वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, फिर भी वैक्सीन लेने के बाद जो कोरोना होता है उसमें मॉर्टेलिटी बहुत ही कम होती है। हमने देखा सेकंड डोज लेने के बाद एक भी डेथ आज तक ये नहीं हुआ है। डेथ होने का जो कारण है तो उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटल घर में ही कुछ तो दवा का लेते हैं और दवाखाने में देर से पहुंचते हैं, और दवाखाने पहुंचते तक उनमें HRCT का स्कोर भी बढ़ जाता है और डिसीज की मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है।
बनारस में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। जिस रफ्तार से हो रही है उससे यही लगता है कि सभी बनारस वासियों को टीका लगने में 4 से 5 महीने का वक्त न लग जाए, क्योंकि वैक्सीन की आमद कम हो गई है। जहां पहले 150 के आसपास कोविड के बूथ चला करते थे, वहां अभी 40 बूथ ही चल रहे हैं। अजय सिंह ने बताया कि बनारस के पुराने मोहल्ले के घनी आबादी में बने इस बिरला चैरिटेबल हॉस्पिटल में हर दिन तकरीबन 250 से 300 लोगों को टीके लग रहे थे, लेकिन बीते 10 दिनों से टीके की आमद कम होने से यहां टीकाकरण बंद है। यही हाल शहर के दूसरे चैरिटेबल अस्पतालों का भी है, टीका बंद है। तो सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। बनारस में लगभग 150 बूथों में टीकाकरण का काम हो रहा था, लेकिन अब 40 बूथों पर ही टीकाकरण हो रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि हमें जैसे जैसे स्टॉक मिलता है हम उसके हिसाब से सेंटरों को घटाते हैं, बढ़ाते रहते हैं।
सर अभी वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं आ रही है, जब सप्लाई आएगी तो चालू हो जाएगा वैक्सीनेशन।
क्या तारीख से शुरू हुआ वैक्सीनेशन?
9 जुलाई से।
क्या कहा गया है?
इस बार अभी सप्लाई नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पे हमारे सेंटर पे इसलिए बंद है। कोई ऑफिशियली जानकारी इस तरह की नहीं आई हुई कि कब से चालू किया जाएगा, किस लिए बंद किया गया है।
विगत 10 दिनों से वैक्सीन की शॉर्टेज होने के कारण अस्पताल में वैक्सीन नहीं आ रही है। उसके प्रति लगभग प्रतिदिन हम लोग के 600 वैक्सीन मिलती थी, लगती थी। हम लोगों ने प्रशासन से बात भी की कि भाई जो भी वैक्सीन आपके पास है तो थोड़ी थोड़ी दें, कम से कम क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल जाए, वरना यही जनता दूर 2 किलोमीटर दूर आपके सरकारी अस्पतालों में जाएगी और वहां भी भीड़ बढ़ेगी, लेकिन जो भी व्यवस्था प्रशासन की हो हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही।
एक पास स्टॉक में नहीं रखे रहते हैं ये टीके, हमको लगातार मिलते रहते, जैसे अभी हमारे 20,000 टीका हमको तुरंत ईडी ऑफिस से हमको मिला, और जो भी टीके होते हैं हमको 30,000 40,000 20,000 मिलते हैं, उससे हम लोग अपना काम चलाते रहते हैं। जब कभी वैक्सीन की कमी होती है तो उस जगह हम लोग सत्र कम लगाते हैं।
तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।